होगी, घड़ी होगी, क्या होगी। कहने लगे कि सब लोगों ने दिलचस्पी ली कि आखिर इस गिफ्ट पैक के अंदर छुपा हुआ क्या है। कहने लगे कि जब वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटे इस गिफ्ट पैक को खोलो, मैंने उसे खोलना शुरू किया तो एक तय थी, फिर उसके अंदर दूसरी तय, फिर उसके अंदर तीसरी तय। अब मैं खोलता जा रहा हूं और लोगों का तजस्सुस बढ़ता जा रहा है, खुद मेरा तजस्सुस भी बढ़ गया कि अब्बू मुझे इस मौके पर क्या चीज देते हैं। कहने लगे कि जब मैंने आखिर पर आखिरी तय उतारी तो अंदर एक छोटा सा खिलौना था बच्चों के खेलने का। जब वो खिलौना निकला तो सारा मजमा हंसने लगा। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा भी हुआ कि मेरी वलीमा की तकरीब है और वाले साहब ने मुझे ये खिलौना देना था और लोगों के सामने जग हंसाई होनी थी मेरी। मैं जरा खामोश हो गया। खैर, लोग तो हंसे मुस्कराए, एंजॉय किया और चले गए। चंद दिन के बाद अब्बू से बैठे मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा, अब्बू आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। क्यों बेटे? इसलिए कि आपने मुझे इतने बड़े मजमे के सामने मजाक बना दिया, सारे मुझ पर हंसने लगे कि मुझे आपने ये छोटा सा खिलौना दिया इस तकरीब की खुशी में। तो उस वक्त वालिद ने बात समझाई कि देखो बेटा, मैं तुम्हें एक मैसेज देना चाहता था, एक पैगाम समझाना चाहता था। बचपन में एक मर्तबा मेरे पास पैसे नहीं थे और तुमने इसी खिलौने का मुझसे मुतालबा किया था जो मैं खरीद ना सका, तो आप इतना रोए, इतना खफा हुए कि आप एक हफ्ता मुझसे बोले भी नहीं कि मुझे खिलौना लेकर क्यों नहीं दिया। इतनी मोहब्बत थी, इतनी चाहत थी, इस खिलौने की इतनी पसंदीदगी थी आप में कि आपने अपने वालिद से एक हफ्ता कलाम तक न किया। मैंने ये सोचा कि आज इस शादी की खुशी की तकरीब में मैं ये खिलौना आपको लेकर दूं और आपको ये समझाऊं कि देखो बेटे, बचपन में इस खिलौने को लेना ये आपकी आरजू थी, ये आपकी तमन्ना थी, लेकिन जब आप जवानी में पहुंचे और भरे मजमे में लोगों के सामने आपकी तमन्ना को पेश किया तो आपको खुद भी शर्मिंदगी हुई कि क्या इस चीज के पीछे मैंने अपने वालिद से मुंह मोड़ लिया था। मैं ये पैगाम देना चाहता था कि बेटे, बचपन की तमन्नाएं जवानी में अगर बंदे के सामने खोली जाएं, भरे मजमे में, बंदे को शर्मिंदगी होती है। तुम जवानी में अपनी कोई ऐसी आरजू और तमन्ना मत बनाना कि कल कयामत के मजमे में अगर उसे खोल दिया जाए तो तुम्हें वहां जाकर शर्मिंदगी हो। तो देखिए, जो अच्छे माँ बाप होते हैं वो बच्चों को इन छोटी छोटी बातों में ही अच्छी तालीम देते हैं और बिल आखिर उन बच्चों को अच्छा इंसान बना देते हैं। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें शुरू से ही एहसास जिम्मेदारी होता है और लड़कपन में ही वो बड़े जिम्मेदार बन के रहते हैं। हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बचपन में मेरे घर के हालात गुर्बत ही के थे, मगर मैंने किसी से टोपियां बनाना सीख लिया था। जैसे औरतें कुरैशिये के साथ बैठ के मुख्तलिफ चीजें बनाती रहती हैं, तो कहने लगे कि बस मैं भी इसी तरह बैठ के वो टोपी बनाता रहता था। हत्ता के कई मर्तबा उस्ताद क्लास में पढ़ा रहा होता था, मैं पीछे बैठा होता था, सबक भी सुन रहा होता था और साथ टोपी भी बना रहा होता था। मगर अल्लाह ने जहन ऐसा दिया था कि साथ वाले बच्चे जब कोई चीज नहीं समझ सकते थे तो मैं टोपी बनाना छोड़कर उनको वो बात सुना देता था, तो वह हैरान होते थे कि तुम टोपियां बनाते हुए उस्ताद का दर्स सुनते हो और इतना तुम्हें याद होता है। फरमाते, मैं इस तरह टाइम बचा के टोपियां बनाता, उनको बेचता और उससे जो मुझे थोड़े से पैसे मिलते उससे मैं अपने मदरसे का खर्चा चलाया करता था। तो बाज बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अपने बचपन में उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत एहसास जिम्मेदारी दे देते हैं। खुद मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपनी बस्ती से जब दारुल उलूम में पढ़ने के लिए आता तो सर्दियों की रातों में इम्तहानों के करीब रात को जरा देर तक पढ़ना होता था, तैयारी करनी होती थी। जब मैं वापस लौट के आता तो घर के सारे लोग सोए होते थे, अम्मी उठती और उस वक्त मुझे वो खाना गर्म करके देती तो मैं अम्मी की मिन्नत से माजत करता कि आप क्यों सर्दियों में उठती हैं, बस आप खाना रख दिया करें, मैं खुद ही आके खा लिया करूंगा। बड़ी मुश्किल से अम्मी को मैंने मनाया। फरमाते कि मैं जब वाता तो सालन जमा हुआ होता, मैं उसके ऊपर से जो जमी हुई तहती वो हटा दिया करता था और ठंडा खाना खाकर गुजारा कर लेता, लेकिन मैं अपनी तालीम में हर्ज आने नहीं देता था। अब देखो ना, जिन बच्चों के अंदर बचपन लड़कपन से यूं इल्म का शगफ हो, शौक हो, तलब हो, एहसास जिम्मेदारी हो और वो इल्म की खातिर इस तरह अपनी जरूरतों को भी कुर्बान करें, फिर वो लोग होते हैं जो अपनी जवानी में आसमान इल्म के ऊपर सितारे बनकर चमका करते हैं। फिर एक वक्त आया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बच्चे को मुफ्ती आजम पाकिस्तान बना दिया। चुनाचे बचपन में एक तो बच्चे का जहन कच्चा होता है, मां बाप को यह चाहिए कि वो जिन के साथ खेल रहा है इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दें, इसलिए कि दोस्त से इतना कुछ वो सीखता है कि जितना वो मां बाप से नहीं सीखता। बच्ची है तो सहेली से सीखेगी, बच्चा है तो अपने दोस्त से सीखेगा। इसलिए मौलाना यहया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर बच्चा बिल्कुल कुंद जहन हो लेकिन दोस्त उसका नेक हो तो इस बच्चे की कश्ती कभी ना कभी किनारे लग जाएगी, और बच्चा कितना ही जहीन क्यों ना हो अगर दोस्त उसका बुरा हो तो कभी ना कभी उसकी कश्ती बीच दरिया में डूब जाएगी। चुनाचे उन्होंने हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की कितनी अच्छी तरबियत की कि उनके बेटे फिर अपने वक्त के शेखुल हदीस बने और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको क्या कबूलियत आम्मा अता फरमाई। चुनाचे बाद बच्चे बचपन में ही सआदत के आसार लेकर आते हैं, जैसे हजरत मौलाना कासिम नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान में उनके बच्चे थे हाफिज अहमद साहब। अल्लाह की शान कि इनकी शादी हुई तो एक आध बच्चा हुआ जो बचपन में ही फौत हो गया, फिर कुछ अरसा बच्चे ही नहीं हुए, उम्मीद ही नहीं लगी। सब लोग फिक्रमंद थे और सब चाहते थे कि खानदान कासमी का सिलसिला ये चलता रहे, इल्मी घराना है और ये इल्मी यादगारें आगे बढ़ती रहें, क़यामत तक उनका फैज चले। सब लोग दुआएं करते थे, चुनाचे कोई उम्मीद ही नहीं नजर आती थी। तो एक मर्तबा किसी ने, एक बुजुर्ग थे फतेहपुर के रहने वाले, उनकी तरफ कोई जाने वाला आदमी था, उसको पैगाम देकर भेजा कि जी हाफिज अहमद साहब के लिए औलाद की दुआ करें। ये गए और इन्होंने जाकर पैगाम भी दिया। वो बुजुर्ग जानते थे इस खानदान की इल्मी वजाहत और इल्मी मकाम को, तो उन्होंने जब सुना तो थोड़ी देर तो खामोश रहे और थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहने लगे, हाँ हाँ बच्चा होगा, हाफिज होगा, कारी होगा, हाजी होगा, आलिम होगा, अपने वक्त का मुक्तदा होगा। ये अल्फाज कहे और इसके चंद दिन के बाद उम्मीद लग गई उनकी अहलिया को और अल्लाह ने उनको बेटा दिया जो बड़े होकर हजरत कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह बने। तो देखिए बस औकात ऐसे भी होता है कि मां के पेट से ही अल्लाह उनको विलायत का नूर अता फरमा देता है, ऐसी शख्सियत ने पैदा होना था। तो बचपन में बच्चे को बहुत सारी बातें